शांति। सभी एक हाथ से आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिर्ढा जी का स्वागत करेंगे, मोस्ट वेलकम करेंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय भाई साहब का दूंगा। भाई साहब लगभग 50 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं। 50 साल पूर्व बाबा ने आज के लिए देखो कितनी बड़ी ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवा आप देखते ही हैं। 91 में ग्लोबल हॉस्पिटल बनकर शायद वो प्लान था, तब भाई साहब ही उस प्लान से जुड़े और पिछले 26 साल से आप डायरेक्टर के रूप में ग्लोबल हॉस्पिटल का कुशल संचालन कर रहे हैं, है ना। ग्लोबल हॉस्पिटल सभी तन मन का स्वास्थ्य, हम लोग तो मन का स्वास्थ्य बाबा से लेते हैं लेकिन तन के स्वास्थ्य के लिए ब्राह्मण तो जाते ही हैं। और भाई साहब सरल स्वभाव के धनी हैं, हम देखते ही हैं, और आपके नम्र मिलनसार व्यवहार से ही आप दादियों ही नहीं, ब्राह्मण परिवार में आबू के भी काफी प्रिय हैं, मैंने सभी के। और आपने देखा होगा कि ग्लोबल हॉस्पिटल के बाद ही आबू निवासियों की, बाहर के लोगों की जो भावना है, जो गांव गांव में भाई साहब की कठिन मेहनत और जिस तरह से गांव गांव की आत्माओं की मन तन का भी जो लाभ सबको मिल रहा है ग्लोबल हॉस्पिटल से, तो उनके मन में एक बहुत अच्छी छवि ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए बनी। और नीचे भी आपने ट्रॉमा सेंटर देखा, आई हॉस्पिटल, नर्सिंग स्कूल, सबका डायरेक्शन भाई साहब के द्वारा है। तो थोड़ा ताली बजा लीजिए भाई साहब की, ठीक है। और भाई साहब जैसे आज बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलने की बात कही, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो, तो भाई साहब इतने व्यस्त होते भी हम उनको, कभी मैंने ऐसे उनको अमृत वेला पांडव भवन रेगुलर माना, ग्लोबल हॉस्पिटल से चाहे ठंडी गर्मी सर्दी मैंने भाई साहब को खुद ही देखा, मैंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं, और पूरी दिनचर्या जो श्रीमत प्रमाण है तो हम सबके लिए अनुकरणीय है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी माना हर चीज को एक्यूरेट बाबा की, तो वो एक हम सब के लिए प्रेरणा। तो मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने अनुभव युक्त अपनी स्पीच से सबको लाभान्वित करेंगे। भाई साहब ओम शांति।
ओम शांति। ब्राह्मण जीवन, हम सभी अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं, हमारी स्टूडेंट लाइफ है, और साथ साथ हम बाबा को पहचान कर सच्चे सच्चे सेवाधारी भी हैं। आज भी जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि एक सिंपल सी बात है, सब लोगों से पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, केवल ये शब्द आप ही पूछ सकते हो, कोई और नहीं पूछ सकता, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले हमारा संबंध अपने से जोड़ा, अपने से जुड़वाया, और फिर बाकी सब चीजें तो सहज हो गई। पहले तो कनेक्शन जुड़ा, संबंध जुड़ा, हमने बाबा को पहचाना कि वो हमारे सच्चे सच्चे पिता है, उसमें कितनी सरलता है, उसमें कुछ मुश्किल था क्या? पहचानने की बात थी कि वो परम पिता परमात्मा है। बाबा कभी कभी ये भी मुरली में कहते हैं कि सबको बताओ कि आपके दो बाप हैं, सहज के एक तो हम सबका लौकिक बाप है वो अलग है सबका, और एक हम सबका पारलौकिक बाप है। ज्ञान को अगर हम समझें, ज्ञान का अर्थ ही क्या है, समझ, अंडरस्टैंडिंग, जो हमें समझ आ गया वो ज्ञान है। आज भी बाबा ने कहा कथनी और करनी को एक करो। दुनिया में भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति में हम केवल गाते हैं, पूजा करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते। यहां सबसे बड़ा बात जो बड़ी एम्फेसिस दी जाती है, जो महत्व दिया जाता है कि जो हम कहें वो हम करें। अभी बाबा ने हमें कहा कि संकल्प हमारा सबसे बड़ा खजाना है। संकल्प क्या है? हमारा सबसे बड़ा खजाना है। और कहते भी हैं संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। कभी कभी मैं अपने आप को भी देखता हूं, हम बैठते हैं बाबा की याद में लेकिन बुद्धि कहां पहुंच जाती है। फिर मैं उसको रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे वापस ले जाता हूं कि ये बात आई कहां से। तो संकल्पों की लहर तो ऐसी होती है, हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बैठते बाबा को याद करने के लिए है लेकिन बुद्धि कहां पहुंच जाती है। कनेक्शन है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें बहुत कुछ रहता है। लेकिन बाबा ने हमें यही सिखाया कि कॉन्शियसली हमें अपने मन को भगवान में लगाना है। तो पहले पहले क्या करना है? पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। ये भी कितना सहज है। अब तक हम सुनते आए थे, गीता में भी पढ़ते थे, सब कुछ महात्माओं से सुनते थे, विद्वानों से सुनते थे कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, शरीर विनाशी, ये सुनते थे। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया? बाबा ने सिखाया कि आपको आत्म अभिमानी होकर चलना है। ये किसी ने नहीं कहा, ये जरूर कहा कि आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं कहा कि आपको आत्म अभिमानी होकर चलना है। सारी मुश्किलें कब आती हैं? ये हमारा जीवन बहुत सहज है जब देह अभिमान आता है। ये अब हमने रियलाइज किया है, हमने समझा है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं। हम शुरू शुरू में यही तो अभ्यास करते हैं। हम आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जो पढ़ते हैं जनवरी माह से ले, तो बाबा ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया? जिसको देखते थे, ये शोधा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, दीवारों पर भी, कहते हैं बनारस में जब गए थे। तो आत्मा समझना और आत्मा समझकर चलना कितना सिंपल है। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान में हमें कोई कठिनाई नहीं आती, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज ही नहीं है। हम लोग जब बचपन में साधु महात्माओं के पास जाते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, कुछ पल्ले पड़ता था, कुछ नहीं पड़ता था, कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात थी। कोई गरुड़ पुराण सुनाता था, कभी कोई कुछ सुनाता था। आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है, आप ये करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ऐसा जन्म मिलेगा, ये सब बातें सुनते थे। सुनते हुए भी डर लगता था। लेकिन यहां बाबा ने भय खत्म कर दिया कि आप आत्मा हो। दुनिया में कितना भय है, क्योंकि अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है जीवन में, पता नहीं कल क्या होगा। ये दुनिया का जो इकॉनमी है, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, वो कब खत्म हो जाएगी किसको पता नहीं है। एनवायरमेंट कैसे तेजी से, वातावरण में कितने परिवर्तन आ रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में क्या हुआ था, इतनी पोल्यूशन बढ़ गई थी कि स्कूल बंद करने पड़े थे, कि हवा भी शुद्ध नहीं रही है सांस लेने के लिए। तो वातावरण भी परिवर्तित हो रहा है। लेकिन बाबा ने हमें कितना निश्चिंत कर दिया है कि बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, ये आपका जीवन हीरे तुल्य है। इस जीवन में ही जो प्राप्तियां मिलेंगी वही प्राप्तियां आपके आने वाले जन्मों का आधार बनेगी। क्योंकि जब बाबा को याद करते हैं तो वर्षा भी याद आता है ना, बाबा से हम कनेक्ट करते हैं तो जो उनसे अविनाशी प्राप्ति मिलती है वो भी याद आती है। पहले तो पूछते थे बाबा याद है, वर्षा याद है, तो बाकी और बाबा मुरली में कभी कभी कहते हैं ना, बाकी और पढ़ाई में जो कुछ भी है जीवन निर्वाह अर्थ पढ़ाई पढ़ते हैं हम, कोई डॉक्टर बनता है या कोई इंजीनियर बनता है, कोई आर्किटेक्ट बनता है, कोई वकील बनता है, वो है जीवन यापन करने के लिए पढ़ाई, और ये पढ़ाई है जीवन बनाने के लिए, न केवल एक जन्म लेकिन अनेक जन्म बनाने के लिए है, जीवन बनाने के लिए है। पर्पस क्या है, फुलफिलमेंट किस बात में है, संपन्नता हमें किस बात में महसूस होती है। आज दुनिया में सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन फिर भी जीवन खाली है, कहते हैं अंदर खाली खाली लगता है। तो फुलफिलमेंट या संपन्नता किस में आती है, संपन्नता आती है जब लाइफ में कोई पर्पस होता है, कोई लक्ष्य होता है। बाबा ने हमें जीवन का लक्ष्य क्या दिया है, हमारे जीवन का एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, और उससे पहले क्या है जी, बाप समान बनना। लक्ष्य हमारे सामने कौन है, ब्रह्मा बाप हमारे सामने एग्जाम्पल है साकार में, बाप समान बनना। कहीं भी किसी सत्संग में किसी गुरु के पास कोई ये नहीं कहता कि आपको मेरे समान बनना है। यहां बाबा ने कहा हमें कि बच्चों आपको बाप को देखना है। ज्ञान क्या दिया कि जैसे ब्रह्मा बाप ने दुनिया में रहते हुए बाबा की श्रीमत का पालन किया। आज मुरली में बाबा ने कहा ना कि श्रीमत का पालन ना करना ही सबसे बड़ी खामी है, श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो श्रीमत ही हमारे जीवन की फाउंडेशन है। तो हम सभी ब्राह्मण जीवन में आज अपने जीवन को इतना सहज क्यों अनुभव करते हैं, इतना सरल क्यों अनुभव करते हैं। हमारा स्वभाव भी चेंज हो गया, हमारी ड्रेस भी चेंज हो गई, हमारी सोशल रिलेशनशिप भी चेंज हो गई। बाबा तो ये कहते हैं ना कि लोग अभी हमें ये समझाते हैं कि आपकी जीवन की धारणाएं क्या है, कहीं हमारी आवाज कुछ ऊंची होती है तो लोग कहते हैं आप तो ब्रह्मा कुमार हो, आप ऊंचा थोड़ी बोल सकते हो। मुझे याद है कि हम लोग सेवा करने के लिए जाते थे, प्रदर्शनी करते थे, तो एक बार वापिस आ रहे थे तो लाइन बहुत लंबी थी, बस की टिकट लेनी थी, तो एक भाई कहते चिंता नहीं करो। उसने क्या किया, बैज उतार के जेब में डाला और लाइन में घुस गया बीच में जाके, और थोड़ी देर में टिकट लेके आ गया। उसको भी इस बात का ध्यान था कि मैं बैज लगा के लाइन नहीं तोड़ सकता। तो ये रियलाइजेशन तो है सबको कि ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है श्रेष्ठ धारणाएं। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हमारी लाइफ सिंपल होती है। अब जिसके जीवन में संयम नहीं हो, जिसके जीवन में मर्यादा नहीं हो, तो उसका जीवन क्या होगा, जब चाहा तब उठा, जो चाहा मन में आया कर लिया, और कहते हैं हम तो स्वतंत्र हैं ना, हम वो अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, हम तो अपने मास्टर हैं ना। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि हम अपने मास्टर कब बनेंगे, सेल्फ मास्टरी कब जीवन में आएगी, जब हमारा जीवन श्रीमत के आधार पे होगा। जो बाबा ने हमें सिखाया है उसके आधार पे जीवन होगा, मन भी मेरा कहां जाएगा, तन भी कहां जाएगा और धन भी हम कहां यूज करेंगे बाबा की श्रीमत के आधार पे, तो हमारी जीवन सहज होगी, सरल होगी। अदरवाइज क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम अपने सब्जेक्ट्स को भी देखें, जैसे ज्ञान कितना सिंपल है, अब वो शास्त्रों में तो पढ़ते हैं हजारों साल तपस्या करते हैं और फिर भी कहते हैं हजारों साल तपस्या करने के बाद क्या हुआ, कोई अप्सरा आ गई तपस्या भंग हो गई। तो यहां बाबा ने हमारी फाउंडेशन ही क्या बना दी, आरंभ किस बात से किया, पवित्रता से, कि हमारी वाइब्रेशन, हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारे संकल्प पवित्र हो। ये नहीं कि कर्म, लेकिन संकल्पों पर अटेंशन दिया कि हमारी वृत्ति क्या है। हम भोजन भी कर रहे हैं तो किस वृत्ति से कर रहे हैं, किस कॉन्शियसनेस में वो भोजन कर रहे हैं। हम आसक्ति कहते हैं जिसको, क्रेविंग कहते हैं, आप आसक्ति से किसी चीज को सेवन करते हैं और कभी हम प्रसाद समझकर, जो बाबा के यज्ञ से मिलता है उसको वो समझकर सेवन करते हैं। मुझे याद है एक बार बहुत भीड़ हो गई थी, तब पांडव भवन ही होता था, तो दादी जी, दादी प्रकाशमणि थे, तो उन्होंने सबके लिए ब्रेड मंगवाई, तो दादी ने साथ में भी कहा कि ये नहीं अब जाकर बाहर से ब्रेड मंगवा के खाना, जो यज्ञ से मिलता है, यज्ञ में जो भी आता है बाहर से वो शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है। तो बाबा की याद में हम जो भोजन स्वीकार करते हैं वो भोजन भी हमारे लिए अमृत है। अभी देखिए लोग, आजकल लोग भी इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, उसको वो कहते हैं माइंडफुलनेस ईटिंग। नहीं तो क्या होता है, लोग भोजन कर रहे होते हैं, मन कहीं और होता है, टेलीविजन देख रहे होते हैं, बिजनेस के काम कर रहे हैं, चलते चलते भोजन कर रहे होते हैं। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, इस बात में भी लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास भोजन खाने के लिए भी समय नहीं है, इसका भी उनको महसूस होता है, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन बाबा ने हमें कहा कि भोजन भी कैसे स्वीकार करना है, तो वो भोजन जो जब हम खुश होते हैं, जब हम ध्यान से भोजन करते हैं, भोजन को बाबा की याद में लेते हैं, तो भोजन भी कम स्वीकार होता है, नहीं तो वो एक अनकॉन्शियस ईटिंग हो जाती है। टेलीविजन देख रहे हैं, कुछ खाए जा रहे हैं, पता भी नहीं है कितना खा गए। तो बाबा ने हमारे सब कर्मों को अलौकिक बना दिया, तो उससे सिंपल हो गया। डिफिकल्टी तब आती है जब हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। अब बाबा ने जैसे हमें योग सिखाया, राजयोग का अभ्यास करवाया, तो उसको बाबा ने सिंप्लीफाई करके क्या कहा, ये याद है, ये याद है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये संग है, बाबा की संग रहना है, बाबा को हमें अपना कंपेनियन बनाना है। सिंप्लीफाई कर दिया बहुत, इसमें कुछ कठिनाई है नहीं, तो वो योग आसन करें, वो जो पतंजलि का योग सूत्र है उसमें यही कहते हैं कि योग आसन, जब शरीर को हम संतुलित कर लेते हैं तो फिर उसके बाद साधना होती है। तो योग को भी लोग साधना है, लेकिन आप देखें साधारण भाषा में साधना को भी क्या कहते हैं, ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या है, अटेंशन। तो हम बाबा ने हमें सब इतना सहज बताया है, हमारा बाबा ने कहा कि आप अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो सोफे पे बैठो, सोफे पे नहीं बैठ सकते तबीयत ठीक नहीं तो बिस्तर पे लेटे लेटे भी बाबा को याद कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते भी याद कर सकते हो, सेवा करते भी याद कर सकते हो। यानी ध्यान क्या है हमारा, हम किस बात पर अटेंशन दे रहे हैं, और वो अटेंशन है आत्म अभिमानी होने का। फाउंडेशन तो यही है ना कि हम अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करें, वो है ध्यान। जिसको बाबा कभी कभी ये भी कह देते हैं कि स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति किस बात की, कॉन्शियसनेस किस बात की, कि मैं इस शरीर से अलग अशरीरी आत्मा हूं, देह के भान से मुक्त होना, व्यक्त चीजों के भाव से मुक्त होना, वो है ध्यान। इस बात का अटेंशन रहता है कि मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली निमित्त आत्मा हूं। हम कितने रोल प्ले करते हैं दिन में, काम पे जाते हैं तो जो हमारा प्रोफेशन होता है वो रोल प्ले करते हैं, परिवार में आते हैं तो पिता का, पति का, भाई का, बहन का रोल प्ले करते हैं, मित्रों में जाते हैं तो मित्रों का रोल प्ले करते हैं, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ का रोल प्ले करते हैं। तो रोल हैं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन हैं तो हम एक आत्मा। तो इस ध्यान से चलना, इस कॉन्शियसनेस में चलना और इस कॉन्शियसनेस में रहकर हर कर्म करना। अब हम लोग जब कहते हैं कि हम सब आत्माओं का वास्तविक धर्म क्या है, शांति है, वो लोग कहते हैं दया धर्म का मूल है। तो बाबा ने हमारे चौथे सब्जेक्ट का आधार भी सेवा, सेवा भी हम तब कर सकते हैं रहम दिल होकर करें, जब अपनेपन की भावना हो कि ये हमारे अपने भाई बहन हैं, इनको भी बाबा का परिचय मिले, इनको भी बाबा से वर्षा मिले, वो अविनाशी प्राप्ति मिले। तो कॉन्शियसनेस में ये रहता है कि हम सब आत्माओं का वास्तविक स्वधर्म शांति है, और फिर उसके साथ कितने ही गुण आ जाते हैं। जब हम अपने बोल को शांत करते हैं, जैसे हम भट्टी में अभ्यास करते हैं, सारा दिन साइलेंस में रहते हैं, तो फिर मन अंदर को देखता है संकल्पों की। अब बाबा ये भी कहते हैं ना कि पवित्रता की डेफिनेशन में जाएं तो बहुत गुह है, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। जिन संकल्पों का कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, संकल्प चल रहे हैं, समय बीत जाता है, तो वो भी बाबा ने कहा वो भी अपवित्रता है। तो हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सहज बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी कार्य होता है, मान लीजिए आप इंजीनियर बनते हैं, कुछ किसी चीज का निर्माण करवाते हैं, या अगर डॉक्टर हैं तो पहले पहले जब कोई सर्जन बनता है तो सर्जरी करता है तो हाथ कांपते हैं, लेकिन प्रैक्टिस, अभ्यास, और फिर साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए, ट्रेनिंग क्या चाहिए। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं, फिर साथ साथ अब कोई प्रैक्टिस आप करेंगे तो उसमें क्या क्या साधन चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, तो वो भी हमें जरूरत है। हम कोई नया सेवा स्थान खोलते हैं तो देखते हैं क्या स्थान है, क्या किस एरिया में होना चाहिए, क्या साधन चाहिए। तो हमें अपने जीवन में भी कोई भी हम अभ्यास करना चाहते हैं और उस अभ्यास को सहज बनाना चाहते हैं, कहते भी नहीं करत करत अभ्यास मूढ़मती होए सुजान। तो प्रैक्टिस है। कभी कभी हम जब ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं, ब्राह्मण लाइफ में चलते हैं, तो कुछ चीजें हमें मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो वो सहज हो जाती हैं। तो सहज जीवन बनाने का साधन ही क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। तो संपन्नता के लिए भी अभी बाबा ने जैसे हमें अमृत वेले की आदत डाली या रोज मुरली सुनने की आदत डाली, रोज के अभ्यास की बात डाली, हम मुरली सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब मुरली हम ध्यान से सुनते हैं, उस रस से सुनते हैं, अटेंशन से सुनते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। कभी कभी सुनने के बाद मुरली जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये पॉइंट थी क्या मुरली में, क्योंकि बुद्धि कहीं से कहीं चली जाती है। तो अटेंशन और ध्यान, उससे हम अपने जीवन को सरल भी बना सकते हैं और सहज भी बना सकते हैं। तो लाइफ में सिंप्लिसिटी भी चाहिए। वैसे भी दादी जानकी कहती है ना कि अपने आप को कहते मस्त फकीर हैं हम, हैं तो हम पूरे विश्व के मालिक, लेकिन जेब हमारी खाली है। तो फकीर का अर्थ क्या होता है? जिनको साहब प्यारा लगता है वो फकीर है। सब कुछ है, लेकिन हम उसको प्रयोग किस तरह की आसक्ति से यूज करते हैं, या जैसे प्रभु का दिया हुआ प्रसाद समझकर उसको यूज करते हैं। अब कभी कभी ये बात होती है ना, बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि अंदर रहने वालों से बाहर रहने वाले आगे चले जाते हैं। किस बात से? धारणाओं का ही आधार है ना। समर्पण होना, बुद्धि से समर्पण होना, मन से समर्पण होना, या केवल तन मन धन से समर्पण होना, समर्पण मयता का अर्थ क्या है? उस सब चीजों का आधार है हमारी लगन। जितना हमारी लगन होगी, कोई भी एफर्ट होती है उसमें जब लगन होती है तो वो एफर्ट सहज हो जाती है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य भी हम भावना से करते हैं, लगन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो वो कितना सहज हो जाता है। भक्ति में कितने कष्ट सहते हैं, जितने भी मंदिर हैं वो सब ऊंची ऊंची जगह बने हुए हैं, चढ़ के जाते हैं, वो बोलते हुए जाते हैं जय माता दी, चढ़ते जाते हैं, कुछ मुश्किल लगता है? क्योंकि लगन होती है, भावना होती है। तो इस ईश्वरीय जीवन में भी अगर हमारी लगन होती है, एक सतत अभ्यास करने की इच्छा होती है, तो वो कार्य सहज लगता है। कार्य कठिन तब लगता है जब हम उसको अनमने ढंग से करते हैं, बाबा जिसको अलबेलापन कहते हैं, चलता है कल कर लेंगे। तो जब हम अनमने ढंग से कोई कार्य करेंगे तो हमारी एनर्जी फोकस्ड नहीं होगी। जब हमारी एनर्जी फोकस्ड होती है, हम एकाग्र होकर कोई कार्य करते हैं, तो कार्य सहज हो जाता है। जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था चंडीगढ़ में, तो सबसे मुश्किल मुझे लगता था इमरजेंसी में जब बच्चे आते थे। बच्चों को समझना बहुत मुश्किल होता है, उनकी कंप्लेंट, आप छोटे बच्चे होंगे ना तो वो अपनी कंप्लेंट बता सकेंगे। माँ तो इतना कहेगी ये रोए जा रहा है, अब उसको क्या है? लेकिन जब आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपको बच्चे की क्राई से ही पता लग जाता है कि ये भूख की क्राई है, ये दर्द की क्राई है, या अनकंफर्टेबल है बच्चा। तो ये प्रैक्टिस जो है और ज्ञान, दोनों चीज, ज्ञान को यूज करना ही प्रैक्टिस है। तो ज्ञान को जब हम बार बार यूज करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस है। उससे हमारी लाइफ सिंपल बनती है, सहज बनती है, फिर आनंद आता है। जब कोई कार्य सहज ही हो जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है, फिर हम बाबा को कहते हैं शुक्रिया बाबा। कभी कभी मैं मन में भी सोचता हूँ कोई मुश्किल काम आ जाता है, मुश्किल काम तो कोई भी नहीं होता, लेकिन कभी ऐसे लगता है कोई चैलेंज है तो बाबा को मन में ही कहते हैं बाबा ये कार्य मैं अकेला नहीं कर सकता, आपको साथ में आना है। तो जब कार्य हो जाता है तो कितना आनंद आता है, तो बाबा को हम शुक्रिया करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम मुश्किल कार्य को एक बार कर लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि मैं कर सकता हूं, हमारा अपना फिर हिम्मत बढ़ती है, अगली बार वो कार्य मुश्किल नहीं लगेगा। तो इसलिए कभी मुश्किल भी कोई कार्य आता है, बाबा जैसे कहते हैं ना, कोई विघ्न भी आता है तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। तो हम विघ्नों से घबराएं नहीं, घबराना हमारा काम नहीं है, कठिनाई आती है हमें आगे बढ़ाने के लिए, इम्तिहान आते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जीवन में हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए सभी, उसके लिए हमारे जीवन में गुण भी होने चाहिए, सेवा का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, और फिर पढ़ाई पे भी अटेंशन होना चाहिए, और योग में भी रुचि होनी चाहिए। हमारे रिसोर्सेज तो यही है ना, जो हमारी लाइफ को दिव्य बनाते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं। तो इन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करते हैं। अब ईश्वरीय जीवन में आने के बाद वैसे भी आप देखें अपने जीवन को, तो हमारी जीवन लोगों से तो भिन्न बन जाती है, हमारा रहना, हमारा सहना, हमारा कपड़ा सब सिंपल हो जाता है। लोग तो केवल कहते हैं, वो कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लेकिन बाबा ने तो सही मानों में हमारा जीवन ऐसे बना दिया। विचार हमारे श्रेष्ठ हैं, विचार हमारे उत्तम हैं, और जीवन हमारा सिंपल है। भोजन भी क्या करते हैं, ना तो हमें कहीं बाहर जाकर खाने की जरूरत है, ना कहीं पार्टीज में जाने की जरूरत है। लोग कितना खर्चा करते हैं उस पर, तो वो सब खर्चा भी तो बच जाता है, इकोनॉमी भी जीवन में आ जाती है। तो ये सब जो परिवर्तन आते हैं, ये परिवर्तन में हमें कोई मेहनत लगती है क्या? मेहनत लगती है अपनी सूक्ष्म चीजों पे ध्यान देने की, सूक्ष्म जो भी बातें हैं उन पे अटेंशन देने की, जिसको बाबा कहते हैं अवगुण तो नहीं है लेकिन खामियां हैं, चाहे वो आलस्य की है, चाहे वो अलबेलेपन की है, चाहे वो कभी सिंपल फीलिंग ईर्ष्या की है, या कोई सूक्ष्म आसक्ति है। वो चीजें कभी कभी हमारे सहज जीवन को डिफिकल्ट बना देती हैं, कभी कभी बदला लेने की भावना आ जाती है, कभी कुछ छोटी सी बातें, वो कहते हैं ना चींटी जो है हाथी को गिरा देती है, तो कभी कभी महारथियों के लिए छोटी छोटी बातें भी मुश्किल बन जाती हैं। तो अभी हमें ब्राह्मण जीवन में इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, सेवा का भी अहम भाव नहीं हो, हम अच्छी सेवा करते हैं, हम अच्छे ज्ञानी हैं, हम ज्ञान बहुत अच्छा सुना सकते हैं। तो बाबा ये कहते हैं ना, कभी कभी मैं क्या करता हूं, कोई व्यक्ति चात्रक आ जाता है और किसी बहन के सामने आ जाता है या भाई के सामने आ जाता है, तो मैं उसमें प्रवेश करके भी ज्ञान सुना देता हूं। तो इसलिए हम सब तो निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं बाबा के। हमें तो ये होना चाहिए कि बाबा हम इंस्ट्रूमेंट्स इतने योग्य बने, इतने कैपेबल बने कि बाबा को हमें यूज करने में डिफिकल्टी नहीं आए, बाबा हमें यूज कर सके। नहीं तो कभी कभी कोई सेवा आती है तो हम कभी कहते हैं आज तो मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं ये सेवा नहीं करूंगा, तो उस समय हम रेडी नहीं है, बाबा हमें यूज करना चाहता है, लेकिन हम उस चांस को मिस कर जाते हैं। तो हमें एवर रेडी, बाबा कहता है ना, अभी भी बहुत दिनों से मुरली बाबा कहते हैं बच्चे आपको एवर रेडी बनना है, अचानक का पार्ट कि जो कुछ भी होगा सडनली होगा। एग्जामिनेशन भी हमें पता है हमारे सामने क्या परीक्षाएं आने वाली हैं, लेकिन कब आने वाली है ये तो नहीं पता। बाबा ने इम्तिहान तो सारे बता दिए, क्वेश्चंस तो हमें सब बता दिए कि कभी ब्राह्मणों से विघ्न आएंगे, कभी परिवार वालों से आएंगे, कभी अपने आप से आएंगे, कभी शरीर की व्याधि आएगी, कभी वातावरण में अचानक परिवर्तन होगा, वो सब इम्तिहान आएंगे, वो हमें पता है, लेकिन कब आएंगे ये पता नहीं है। इसलिए एवर रेडी बनना है। हम चाहते हैं कि हम एवर रेडी होंगे तो कभी अलर्ट होंगे, अलर्ट भी रहना है, सुस्त भी नहीं बनना हमें। तो सहज जीवन जो है वो तभी बन सकती है जब हम एवर रेडी होंगे। अब आर्मी में जो लोग रहते हैं उनमें कभी कभी हम लोग जब एनसीसी में स्कूल में पढ़ते थे तो एक कंपटीशन होता था कि रात को अचानक सायरन बजेगा, हमें अपनी यूनिफॉर्म पहन के तैयार होना होता था, फटाफट अपनी ड्रेस पहन के बाहर परेड ग्राउंड में आ जाना होता था। तो वो अब एवर रेडी होंगे, समय पे चीज सामने होगी, अगर ड्रेस कहीं पड़ी होगी, बेल्ट कहीं पड़ा होगा, शूज कहां पड़े होंगे, तो हम तैयार नहीं हो पाएंगे ना समय में। तो अलर्ट और एवर रेडी बनने के लिए अपने बाबा कहते हैं ना कि अपने शस्त्र, माया से युद्ध करने के लिए जो हमें शस्त्र मिले हैं, गदा है या कमल है या शंख है, वो चक्र है, वो चारों साथ में होंगे तभी हम धारण कर पाएंगे ना। तो एक्यूरेट और अलर्ट बनने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, व्यवस्थित भी करना पड़ता है। व्यवस्थित करने के लिए जैसे हम मान लीजिए हम कोई चीज चाबी ही है, उसको रखें कहां और ढूंढें कहां, भूल जाते हैं रख के। तो अगर हम एक्यूरेटली और ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो मैं पता कि चाबी यहां होती है, मेरे रुमाल वहां होते हैं, सॉक्स वहां होती हैं, तो फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइज्ड बनना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जीवन एफर्टलेस हो, जिसको वो इंडस्ट्री में सीमलेस प्रोडक्शन कहते हैं, कि सीमलेस हो, वो हर चीज जैसे वो स्मूथली चलती है, तो उसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, एक्यूरेट भी बनना पड़ेगा। आजकल क्वालिटी की बहुत बात होती है, क्वालिटी एश्योरेंस की बात होती है, इंडस्ट्रीज में भी, हॉस्पिटल्स में भी। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो आपकी कॉस्ट भी कम होती है, आपकी एनर्जी सेविंग भी होती है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, जब हम अलर्ट नहीं होते तो कोई ना कोई भूल हो जाती है, भूल हो जाती है तो उससे हमारी जो आत्मिक एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है, फिर उसको करेक्ट करने में हमें अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसलिए पहली बार में ही अगर हम एक्यूरेट होंगे, अटेंटिव होंगे, तो फिर वो एनर्जी हमारी सेव हो जाएगी। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं, जैसे ही कोई संकल्प आता है तो उसको बोलना ये इस समय के लिए आपका काम नहीं है, ये किनारे हो जाओ। लेकिन अगर हम उस संकल्प के बहाव में चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर समय कहां चले जाएगा पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अलर्ट तो रहना है, जागृत तो रहना है। जागृत रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो क्या होगा, दुश्मन आएगा तो हमारी आंख खुली होगी तो हम दुश्मन को पहचान पाएंगे। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र भी तो दिया है। बाबा कभी कभी कहते भी हैं कि जो भी आप कर्म करो त्रिकालदर्शी बनकर करो, किसने कि उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है उस कर्म का, वो भी आपके सामने उसकी भी पिक्चर हो, नहीं तो क्या होगा, पश्चाताप में समय चला जाएगा। फिर हम सोचते रहेंगे नहीं हम ऐसे करते तो ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं करते तो हम बच जाते। त्रिकालदर्शी होकर करने का अर्थ यह है कि संकल्प के स्टेज पे ही हमारी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। अगर हमारी ब्रेक पावरफुल होगी, और हमारे को तो बाबा ने समझाया ना, ड्रामा सत्य है, ड्रामा इटर्नल है, हमें पता है, नथिंग न्यू। इस बात को अगर हम समझ लें तो जो ब्रूडिंग ओवर होती है, जब हम एक बात को सोचते रहते हैं तो वो सोचेंगे क्या। और ड्रामा में हम ये भी समझते हैं कि हम सभी एक्टर्स हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कभी हम किसी के पार्ट को देखकर विचलित हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाई इज ही डूइंग दैट, हाउ इज ही डूइंग दैट। लेकिन अगर हम समझते हैं ये इसका पार्ट है, और ड्रामा में जो कुछ भी होता है वो एक्यूरेट होता है। कोई चीज हमें अनुभवी बनाने के लिए आती है, कोई चीज हमें सिखाने के लिए आती है, कोई चीज हमें अलर्ट करने के लिए आती है। तो ड्रामा ऐसी चीज है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होता। ड्रामा में हमें पता नहीं है अपने कर्म कहानी। ड्रामा तो पावरफुल ब्रेक है, ढाल है हमें संभालने के लिए अपने आप को, माया से बचने का साधन है। हर आत्मा में विशेषताएं हैं, हर आत्मा यूनिक है, कोई दो आत्मा एक समान नहीं है इस ड्रामा में, इस सृष्टि रूपी नाटक में। और बाबा ने यह भी कह दिया कि यह हूबहू रिपीट होता है। जब हूबहू रिपीट होता है तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है, ऐसा प्ले करना है जो अति उत्तम हो, क्योंकि वही रिपीट होगा फिर। तो मेरी अटेंशन कितनी होनी चाहिए कि मैं वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर हूं, मुझे सब लोग देख रहे हैं, तो मेरी अटेंशन कितनी पावरफुल होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, हम सबके लिए क्या है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। हम सभी वर्ल्ड की स्टेज पे हैं। एक ब्लेसिंग में अभी बाबा ने कहा था, आप तना हो, तपस्या का पॉइंट था शायद, आप तना हो, तने से जड़ को भी पानी मिलता है और फिर ब्रांचेस को भी सहारा मिलता है। स्टेम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम अपने स्वमान, जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, उस स्वमान को समझकर चलते हैं तो कभी हम ऊपर नीचे नहीं होंगे। मुश्किल तभी आती है जब हम अपने स्वमान को भूल जाते हैं। एक यही स्वमान के मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं प्रीत बुद्धि हूं। अगर ये भी हमारी स्मृति में रहता है, सिंपल सी बात है लेकिन उसकी इंप्लीकेशंस कितनी बड़ी है। ईश्वर की संतान हूं मैं, कोई मनुष्य आत्मा की संतान नहीं। ना तो मेरे में आसुरी गुण आ सकते हैं, ना मैं साधारण कर्म कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो ईश्वरीय संतान हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। तो वो स्वमान भी हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, ड्रामा भी हमें प्रोटेक्ट करता है, स्वमान भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बाबा कहते हैं ना, आप लड़ाई के मैदान में हो, वॉरियर हो, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन, इनकॉग्निटो हैं हम। तो जो योद्धा होता है उसको तो अलर्ट रहना पड़ता है ना दुश्मन से। तो हम सभी बैटल फील्ड में भी हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे दुश्मन कौन है। अलबेलापन है, आलस्य है, कंपैरिजन है, कभी कंपटीशन है, कभी परचिंतन है, कभी किसी के प्रति थोड़ा सा ईर्ष्या भाव भी आ जाता है, तो वो हमारे दुश्मन है जो हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कंपैरिजन, तुलना करना, तो वो सब चीजें कॉम्प्लिकेट करती हैं। लेकिन सहज बनाता है हमारा स्वमान, सहज बनाती है हमारी दिनचर्या, सहज बनाती है हमारे बुद्धि में, निश्चित हमें करती है हमारी ड्रामा की पॉइंट, निश्चिंत बनाती है, हमारा भविष्य निश्चित है। लोगों के मन में कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है, लोगों के मन में कोई उलझन हो सकती है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन हमें पता है हमारा भविष्य क्या है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। वो गुरबाणी में आता ना, चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वत्तदा पला, तो हमारी चढ़ती कला ही पूरे विश्व के लिए कल्याण का आधार बनेगी। तो हम उस चढ़ती कला में चलने वाले पुरुषार्थी हैं। ये संगम ही ऐसा समय है, बाबा ने कहा ना लिफ्ट है। बाबा हमेशा सीढ़ी के चित्र की बात बताता है, उतरने में हमें कितना आधा कल्प लग जाता है, उतरने में तो वैसे देखा जाए तो पूरा कल्प ही लग जाता है, और चढ़ते हम क्या है ये अंतिम जन्म में, लिफ्ट है। तो परमधाम से फिर हम फिर वापिस आते हैं। इसलिए ये समय जो है हमें अपने लिए ही जीवन नहीं है, लेकिन वो दुनिया में भी वो कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है, परोपकार, दूसरों का भला सोचना। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उस पुस्तक का टाइटल था व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। उसमें उसने लिखा था कि जो व्यक्ति, जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, मास्टर दाता बनो, देते रहो बिना किसी एक्सपेक्टेशन। उसने कहा गिविंग, देना जो है वो सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति देता है उसके लिए, उसने बहुत विशेषताएं लिखी थी, अगर आप किसी को सहारा देते हो, सपोर्ट करते हो, किसी को मुश्किल के समय में आप उससे दो शब्द भी एक्सचेंज करते हो, उसका महत्व ज्यादा है। तो गिविंग, मास्टर बिस्टोअर बनना, दाता बनना, देवता, देवता का अर्थ क्या है, हाथ ऐसे दिखाते हैं, तो किसी को सहयोग देना, किसी को मदद देना, किसी को हिम्मत देना, किसी को सहारा देना, और ये सभी चीजें हमें स्ट्रांग बनाती हैं। दे तो हम रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ हमें खुद को आती है। आप देखिए, किसी मुश्किल में कोई व्यक्ति होता है, आप उसकी मदद करते हैं, आपको कितना अंदर से खुशी महसूस होती है, लाइट महसूस करते हैं, अपने आप को लगता है कि मैं किसी के काम आया। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन में हम किसी आत्मा को सहयोग देते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, किसी को समझ देते हैं, किसी को दिव्य गुणों का दान देते हैं, तो कितनी बड़ी चीज हो जाती है उसके लिए। मुश्किल में जब कभी कोई उलझन में होता है तो क्या उसको रोशनी नजर नहीं आती। बाबा ने एक दिन ब्लेसिंग में कहा था ना कि आप अंधकार मिटाने वाले हो, तो हम तो लाइट हाउस हैं, हिम्मत देने वाले हैं, लेकिन पर कभी खुद तो दिल शिकस्त नहीं होंगे ना, ना उम्मीद तो नहीं होंगे। कभी कभी ये भी मुश्किल हो जाती है, हम अपने आप से ना उम्मीद हो जाते हैं, अपने आप से कभी कभी ऐसा नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। वो कभी कभी पुरुषार्थ की बात होती है तो पद की बात होती है, हम सोचते हैं जो मिलेगा ठीक है, जो ड्रामा में होगा, फिर अपने पुरुषार्थ को भी ढीला कर लेते हैं। तो भाव ये कि हम जब दूसरों की उम्मीदों को जगाने वाले होंगे, दूसरे को हिम्मत देने वाले होंगे, तो हम अपनी हिम्मत कैसे छोड़ सकते हैं? मुश्किलें तो आएंगी, बाबा ने ये कहा ना, चैलेंजेस तो आएंगे, बॉक्सिंग है, ये बॉक्सिंग की गेम है। लेकिन हमारी बुद्धि में, कॉन्शियसनेस में क्या है कि हमें बाप समान बनना है, हमें कंप्लीट बनना है। तो जिस व्यक्ति का लक्ष्य कंप्लीट बनने का होता है, तो वो क्या करेगा? उसका पुरुषार्थ भी तो कंप्लीट होगा ना, उसकी हिम्मत भी तो कंप्लीट होगी। अगर हिम्मत आधी होगी तो वो कंप्लीट थोड़ी बन पाएगा। इसलिए हम सब आत्माओं का ये सौभाग्य है कि बाबा ने हमें ज्ञान की इतनी क्लैरिटी दी है, हर चीज का स्पष्टीकरण दिया है। बच्चों को कैसे संभालना है, परिवार को कैसे संभालना है, और फिर हमारी फाउंडेशन क्या है? श्रीमत। श्रीमत ही है जो हमें श्रेष्ठ बनाती है, श्रीमत ही है जो हमें जीवन को सहज बनाती है, श्रीमत ही हमारे को हिम्मत देती है। और श्रीमत का अभी क्या है, हमारे सामने मुरली है। अब हम सबकी बुद्धि में है, अभी कभी कभी कोई शरीर छोड़ता है, अभी रमेश भाई ने शरीर छोड़ा तो वो गीत बजता है, अब घर चलना है। कभी कभी मुझे लगता है ये गीत मोनोटनस तो नहीं हो गया, लेकिन कॉन्शियसनेस में है कि ये अभी हमारा लास्ट जन्म है, अभी हमारी ये रिटर्न जर्नी है। तो रिटर्न जर्नी होती तो क्या करते हैं, हम सब कुछ समेट लेते हैं, अपने संकल्पों का विस्तार समेटते हैं, अपने संबंधों का विस्तार समेटते हैं। अभी समेटने का समय है। अगर मान ले ट्रेन आ जाए और हमारा सामान पैक्ड नहीं हो तो क्या होगा? तो रेस्टलेस महसूस करेंगे, छटपटाहट महसूस होगी, ट्रेन छूट नहीं जाए। तो ये बुद्धि में रहता है कि ये रिटर्न जर्नी का समय है, तो हम सब कुछ समेट के रखते हैं। तो समेटने का समय है, विस्तार को समेटने का समय है, अपने धन को सफल करने का समय है, क्योंकि पता है थोड़ा समय है, नहीं तो क्या होगा। बाबा कहते हैं ना, वो एक बात सुनाते हैं, कभी किसी का धन राजा ले जाए, किसी की चोर लूट के ले जाए, किसी का धूल मिल जाए, सफली उसकी जो प्रभु प्रति लगाए। तो अंतिम समय है, ये बुद्धि में रहता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, वो बोलते हैं कि मौत को हमेशा याद रखो, लेकिन बाबा ने हमें अर्थ सहित समझाया है, ये कल्प का अंतिम समय है। डूम्सडे क्लॉक को भी उन्होंने थोड़ा आगे मूव कर दिया है, अभी न्यूज़पेपर में आया था। तो हमको आध्यात्मिक ज्ञान से ये सहज हो गया है कि हम सब कार्य अर्थ सहित करते हैं, समझ कर करते हैं। हमें पता है ये हमारा अंतिम जन्म है, अब हमारी ये रिटर्न जर्नी है, ये समय चेंज का है, परिवर्तन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो इस समय में हमें अलर्ट रहना, जब चेंज का समय होता है, जब लॉज चेंज होने वाले होते हैं, तो जब अभी जिन लोगों को ये जब चेंज हुआ सिस्टम, इकोनॉमी का सिस्टम, वो डिमोनेटाइजेशन हुई, जो लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे, जिनके पास कुछ था ही नहीं, वो निश्चिंत थे। जिनके पास अनअकाउंटेड पड़ा हुआ था, उनको कितनी रेस्टलेस महसूस हुई। तो बाबा ने हमें हर चीज के लिए तैयार किया, इसलिए अभी इस रिटर्न जर्नी के समय भी हमें अपने आप को रेडी रखना है कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम समझदार हैं, हम हर कार्य को समझ से करेंगे। और हमेशा बाबा कहते थे, और मैं बुद्धि में रखता हूं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो हमें किसी भी लौकिक लॉज में भी वायलेट नहीं करना है, हमें लौकिक सिस्टम को भी संभाल कर चलना है, उनको भी अंडरस्टैंड करना है जो लौकिक कायदे कानून है। रमेश भाई की यही विशेषता थी ना, सबको प्रोसेस कायदे कानून सब समझाते थे कि कायदे से हम चलेंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, कायदे में फायदा है। और हम सब तो समझते हैं कि ईश्वरीय जीवन में जो हम नियम मर्यादाएं फॉलो करते हैं वही सत्युगी दुनिया में हमारे लिए आधार बनती हैं। जो भी सिस्टम्स प्रोसेसेस कस्टम्स यहां बनते हैं वही फिर वहां चल के अविनाशी होते हैं। तो हम सब आत्माओं का ये श्रेष्ठ जीवन है, इस श्रेष्ठ जीवन में हमें हर संकल्प की वैल्यू को समझना है, अपने आप को चेक करना है, अपनी खामियों को जानना है। मुझे याद है कि हम लोग जब अपने सेंटर पे होते हैं, सेंटर से मधुबन में आते हैं, तो मधुबन में तो सब एक सरीखे एक दूसरे से आगे मिलते हैं, तो फिर तब हमें पता लगता है कि हमारे में क्या क्या वीकनेस बची हुई है। मधुबन को दर्पण कहते हैं। तो हम अपनी खामियों को पहचाने और फिर उनको धीरे धीरे उन पर अटेंशन देकर उन पर ध्यान देकर उनको निकालते जाएंगे तो हम सहज बोझ से हल्के होते जाएंगे। क्योंकि बोलते भी है ना कि हम ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में भी लाइट होकर रहना, लाइट का स्वरूप मिलना, आकारी स्वरूप को एक्सपीरियंस करना, वो तभी होगा जब हम सभी बोझों से हल्के हो जाएंगे। और मन में द्वंद होता है, मन में जब कभी कभी ड्यूअलिटी होती है तो उस समय हम कितना भारी महसूस करते हैं। लेकिन एक श्रीमत पर अगर हमारा जीवन है और बुद्धि में क्लैरिटी है, हाँ कभी कभी मदद लेने में कुछ नहीं है, बड़ों से पूछने में, चेक करने में, अपने आप को क्लैरिटी लेने में कभी कभी हम थोड़ा हेसिटेट करते हैं। इसमें हेसिटेट नहीं करना चाहिए। जब कभी हमें लगे कि हमें किसी चीज का स्पष्टीकरण चाहिए, किसी चीज की क्लैरिटी चाहिए, तो हमें बड़ों से निश्चिंत होकर पूछना चाहिए। क्योंकि जब हम, जैसे बाबा भी कहते हैं, जब हम क्लियर रहते हैं, एक मुरली थी ना अभी अव्यक्त मुरली, क्लियर और केयरफुल, तो चीयरफुल रहेंगे। क्लैरिटी तो चाहिए जीवन में, तो क्लियर होकर चलना, क्लीन होकर चलना, स्वच्छता, तो उससे क्या होता है, उससे फिर जो कठिनाई बाद में आने वाली है उसको हम पहले ही हैंडल कर लेते हैं, पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये ईश्वरीय जीवन जो है, ये हमारा जीवन आनंद के लिए है, मौज के लिए है, लेकिन मन मौजी बनने के लिए नहीं है। मौज के लिए तो है, मौज है हमारा जब ईश्वरीय मौज है ये हमारी। हर कर्म का हम आनंद लें, हर कर्म हमें लिफ्ट करने वाला हो, एलिवेट करने वाला हो। कोई भी हम कर्म करते हैं अगर उससे हमें खुशी होती है तो वो कर्म राइट है। अगर उस कर्म करने के बाद हमें कोई उदासी आती है या उलझन आती है तो हमें चेक करना चाहिए ये कर्म राइट है। क्योंकि इमीडिएट प्राप्ति होती है इस जीवन में, और हैप्पीनेस तो ऐसी चीज है जिसका हम सबको एक्सपीरियंस है, और फिर बाबा उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो वो अतीन्द्रिय सुख इसी जन्म में मिलता है। उसका आधार भी क्या है अतीन्द्रिय सुख का? अतीन्द्रिय सुख हमें तब महसूस होता है जब हम एक की लगन में होते हैं, एक से हमारे सर्व संबंध है। अब मीरा को कौन नजर आता था? श्री कृष्ण ही नजर आता था, उसको कोई और नजर भी नहीं आता था। उसको विष का प्याला दिया या सांप दिया, उसको कुछ नहीं नजर आता था। शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड। तो निश्चय से हम निश्चिंत बनते हैं, निश्चय से हमें नशा होता है, और नशे से फिर हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। वो कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी वो इंटॉक्सिकेशन है, और उस इंटॉक्सिकेशन से हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है कि हमें पता ही नहीं है समय कहां जा रहा है। मधुबन में आके हमें समय का पता नहीं रहता ना, दिन भी ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि हमारी दिनचर्या ही अपनी हो जाती है। तो इसलिए ये जीवन आनंद के लिए बाबा ने हमें दिया है, और इसी जीवन में हम बढ़ते रहते हैं और अपने आप पर अटेंशन देते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं, तो उससे ही चेंज आता है और हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति।